राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुभदास जी महाराज द्वारा 1 अक्टूबर 1992 को प्रातः लगभग 8:30 बजे सुजानगढ़ में हुआ। राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। शब्द में प्रश्न किया है कि गीता के 9वें अध्याय में बताया है कि मेरे व्रत का पालन करने से कल्याण होता है, वो देवताओं के पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, यज्ञ आदि पूजा करने वाले को होते हैं। मेरी शंका यह है कि अगर हमें ईश्वर के साथ मिलना है तो क्या उपरोक्त देव पितरादि की सेवा यज्ञ आदि की नहीं करना चाहिए क्या? मुझे अच्छी बात पूछी है तो ध्यान देकर आप लोग सुने। देखो, सेवा पूजा करने का निषेध कहीं नहीं आया है। ये बात बताई है जानती देव प्रसाद देवान कृषि यांत्री कृषि प्रसाद भूषण यांत्री भूषे दिया यांत्री मध्यमाम, ये जो श्लोक आए हैं ऐसा ऐसा करने के बाद ये फल होता है, ऐसी बात नहीं है, निषेध नहीं है। इसका तात्पर्य समझो, मन में कामना इच्छा रख करके तुम किसी का भी पूजन आदर सत्कार करोगे तो उसका फल अंत वाला होगा। मानो फल मिलने के नष्ट हो जाएगा, जैसे वृक्ष के फल लगता है तो फल देने पर वृक्ष सफल हो जाता है, फल हो गया, बस खेती होगी फलित होगी खत्म होगी। ऐसे आपके कर्मों का फल मिल करके नष्ट हो जाएगा और भगवान का भजन करोगे तो वो फल नष्ट नहीं होगा। उसमें एक बड़े रहस्य की बात है, उसको समझो। भगवान की तरफ चलते हैं तो भगवान के हम अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो भगवान के यहाँ पहुँचते हैं तो अपने असली घर में पहुँच जाएंगे और दूसरों के जाएंगे तो भटकते फिरेंगे, असली अपना घर नहीं है वो। हमसे सुने फिर कह देता हूँ, ममेव वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव परमात्मा का अंश है। रामायण में भी आया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये ईश्वर का अंश है। तो लड़का कितना ही होशियार और क्यों के साथ रहे, क्यों से मांगे, परंतु जब तक अपने घर पर नहीं पहुंचता तब तक उसकी स्थायी स्थिति वहां नहीं होती। और मेरा अंश है, मेरा पूजन करेगा तो मेरे को ही प्राप्त होगा। भगवान ने अपने को कितना सरल बताया है, ये 7वें 9वें 2 अध्यायों में ये विशेषता से आ रही है बातें। आप सुना, कृपा करो, प्रार्थना करता हूँ मेरी बात पर ध्यान दो। भगवान कहते हैं कि अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ जाता है तो मेरे भाव को प्राप्त होता है। उस आठवें अध्याय में ये बताया कि जैसे मेरा स्मरण करता है तो यही यही वापी स्मरण भावम सज्जनते गले ब्रह्म, छठे श्लोक में आठवें अध्याय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ प्राणी मरकर जाता है उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो ये व्रत धारण करने वाले देवताओं का, भूत प्रेत पिशाच आदि का पूजन करने वाले सत्रह अध्याय में भी आई है यंत्री देव प्रताप जी। तो सातवें में, नौवें में, आठवें में, सत्रहवें में ऐसी गतियों का वर्णन, चौदहवें में ऐसी गतियों का वर्णन आया है। तो मतलब है जीव के कल्याण से, और कल्याण होता है संसार की कामना के त्याग करने से। पूजन का निषेध किसी जगह नहीं है। जब देवताओं का और पितरों का भी पूजन न करें तो कुत्ते को रोटी क्यों डालेंगे हम बताओ, और कौवे को क्यों देंगे, गाय को क्यों देंगे। जब देवताओं के पूजन करने वाले देवताओं की प्राप्त हो है तो कुत्ते को रोटी डाल, कुत्ता होगा। ये तात्पर्य नहीं है, सेवा करने का निषेध नहीं है। तुम इष्ट किसको मानते हो, तुम श्रेष्ठ किसको मानते हो, तो परमात्मा को मान करके कुत्ते को रोटी डालो तो भी आपको परमात्मा प्राप्ति होगी। देवताओं का, पितरों का, भूत प्रेतों का भी कहीं दबी दे दो, कोई दे दो कोई, तो कोई दोष नहीं है। कुत्तों को रोटी डालो, कौओं को डालो, गरीबों को दो, वो देने का निषेध नहीं है। तुम्हारा व्रत, तुम्हारा नियम उसी के लिए होगा, तुम वही जाओगे। तो आठवाज में कह दिया यंग यंग हुआ भी जिस जिसका स्मरण करता हुआ मर कर जाता है वो उसी को प्राप्त होता है। कितनी विलक्षण बात है। और इससे और विलक्षण बात बता रहे वही आठवां अध्याय में अगर इस श्लोक क्या है, यंग यंग वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते करे वरम तम तम एवं ऐसी कौन सी, उसी उसी को ही प्राप्त होता है। और पांचवें श्लोक में वही आठवें में अंत काले तो मामे वह मेरा स्मरण करता मेरे को प्राप्त होता है। तो मेरा स्मरण करते हुए मेरे को प्राप्त होता है, मैंने कोई पक्षपात नहीं किया है। कुत्ते का स्मरण करता है, कुत्ते को पालता है, कुत्ते को रखता है, कुत्ते का भी स्मरण करता है तो कुत्ता बन जाता है। और जितनी कीमत में कुत्ते की जोड़ी मिले उतने ही कीमत में मैं मिलता हूँ। आप ध्यान दें कृपानाथ, गधे का स्मरण करता हूँ गधा हो जाता है तो मेरे स्मरण करो मेरे को प्राप्त हो जाता है। तो स्मरण के अनुसार इसकी गति होती है। जितने दामों में कुत्ते की जोड़ी मिले, जितने का दामों में गधे की जोड़ी मिले, उतने ही दामों में भगवान मिले। तो चेताते हैं भगवान, सेवा का निषेध नहीं करते हैं, यज्ञों का निषेध नहीं करते हैं, दान पुण्य का निषेध नहीं करते हैं, सबकी रक्षा का निषेध नहीं करते हैं। तुम्हारा ध्येय क्या है, तुम्हारा इष्ट क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य परमात्मा का रख करके गरीबों की सेवा करो, आबादियों की सेवा करो, कोढ़ियों की सेवा करो, निर्धनों की सेवा करो, पशु पक्षी की सेवा करो, उसको परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो सेवा का निषेध में तात्पर्य नहीं है। तुम जो उद्देश्य रखते हो और बड़ा किसको मानते हो, जिंदे सात्विक का देवान उस यक्ष राजसा और प्रेतान भूतकना हिजनते तामसा जना सत्य परीक्षा बताई। देवत जो श्रेष्ठ पुरुष सात्विक देवता पूजन करते हैं, राजसी राक्षस देव राक्षस देव तो पूजन करते हैं और भूत प्रेतों को पूजन करते तामसी मनुष्य होते हैं, तो उनकी प्रगति अनुसार वहीं जाएंगे वो। इस वास्ते उद्देश्य ध्येय परमात्मा हो, इष्ट देव परमात्मा हो, सेवा सबकी करो। सेवा करने का निषेध नहीं है, उन श्लोकों को जरा पढ़ो, उस पर टीका लिखी वो भी पढ़ो। या हमने सुना साधक संजीवनी बहुत बिकी, तो उसमें पढ़ो तो सही आप, उनकी टीका में क्या उसे लिखा हुआ सब। तो सेवा का निषेध नहीं है, व्रतों का निषेध नहीं, निषेध भीतर में उद्देश्य लक्ष्य आपका क्या है। संसारी लक्ष्य होगा तो पतन हो जाएगा। इस वास्ते सबकी सेवा करो, वो पितरों की देवताओं की सब यज्ञ आदि नहीं करनी चाहिए क्या, ना ये नहीं है, करो, परंतु करो निष्काम भाव से, उनके हित के लिए, अपने उससे कुछ नहीं लेना है, सेवा करना है। उसे लो तो उन लोगों के सिवाय भी क्या देंगे, प्रेत भूतों की पूजा कर दो, प्रेत भूत बन जाओगे, तो पूजा का निषेध नहीं है, उनको भी दो, उनको भी तर्पण करो। मैं तो कई बार कहता हूँ, आप पितरों का तर्पण करते हो तो स्नान करके धोती है, एक बात बताता हूँ, विशेष ध्यान नहीं देते लोग, स्नान करके संध्या वंदन करना चाहिए, पर संध्या वंदन करने से पहले धोती नहीं धोनी चाहिए। अब आपको ये बड़ी अजब बात बता दी, अजब नहीं है, धोती धोने से, धोती के छींटे लगने से अशुद्धि आ जाती है, इस वास्ते धोती का कपड़ा रहने दो, पीछे संध्या आदि करके पीछे धोती धो, और पितरों को उनको पानी दो, और धोती है धो करके उनको निचोड़ो, तो जो भूत है प्रेत है उनके नाम से निचोड़ो तो वे भी तृप्त हो जाएंगे, वे शुद्ध पानी नहीं पी सकते, निर्मल पानी निर्मल नहीं पी सकते, धोती का पानी निचोड़ो तो पी सकते हैं, वो अशुद्ध पानी पी सकते हैं, चपटी गैर बाकी रेखा वो पानी डालने से उनकी तृप्ति होती, वो ही पी सकते हैं, उनका अधिकार नहीं है, सरोवर भरे पड़े हैं, नदियां बहती है, पर नहीं पी सकते, वो पीने का अधिकार नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बात सुनी है कि वे शौच जा करके एक कांटों वाला वृक्ष था, उसमें सदैव पानी डाल दिया करते, तो कांटों के ऊपर लगे हुए बिंदु है, इनमें भूत प्रेत आदि पी लेते हैं पानी, कांटों के वृक्ष में आंख में इनमें भी पीते हैं, अशुद्ध पानी है ना, टट्टी जाने के बाद में पानी अशुद्ध होता है, तो अशुद्ध पानी भी पी लेते हैं, उनकी तृप्ति हो जाती है, शुद्ध पानी नहीं पी सकते। इस वास्ते धोती पीछे निर्भर होनी चाहिए, जिन उनको तृप्ति हो, और भावना करनी चाहिए जो शुद्ध नहीं पी सकते वे इनसे तृप्त हो जाए, तो पुण्य होता बड़ा भाई। वो गोस्वामी जी महाराज ने ऐसा किया तो एक दिन प्रेत प्रसन्न हो गया, प्रगट हो गया, कैसे आपने, मैं बरसों से प्यासे मर रहा था, ये प्रेत भूत आदि की जोनी है, कितने ही तो भूखा मरो, कितने ही प्यासे मरो, जब तक उनके पाप का नाश नहीं होगा तब मरते नहीं है। नरकों में जीव दुख भोगने के लिए जाते हैं, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो टुकड़े मिलकर पासे हो जाएगा, जब तक पाप का फल पूरा नहीं भोगे तब तक मरते नहीं, मनुष्य नहीं जा सकता, ये मर जाएगा, पर वो पाप के लिए ही बने हैं। तो वो तृप्त हो गया तो बोलेगा, महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं, बहुत दिनों का प्यासा था, आपने मेरे को जल पिया, मैं तृप्त हो गया। तो गोस्वामी महाराज तो भक्त थे, वे यही कहते मेरे को भगवान से मिला दो, भगवान के दर्शन करा दो, अब प्रेत भूत भगवान के दर्शन कैसे करा दे, पर तो उनके तो भाई हरे की कोई बात पूछे तो अपने मन की बात पूछते कैसे। तो उसने कहा महाराज ये तो मेरे हाथ की बात नहीं है, पर तो मैं रास्ता बता दूंगा, कहते क्या, जो रामायण की कथा होती है उसमें हनुमान जी महाराज आते हैं तो वे एक कोढ़ी की तरह ऐसे मैले कपड़े ऐसे लेकर आते हैं, सुनते हैं तुम तो उनके पैर पकड़ लो, वे भगवान से मिला सकते हैं। तुलसी नफा पिछाड़ी तो वो मिल गए, पकड़ लिया पैर, छोड़ दे, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। क्या चाहता है कि भगवान के दर्शन कराओ, ज्यादा हट किया और मन में भावना थी, भगवान की भक्ति थी मन में, तो हनुमान जी बना तो कृपालु है। तो उन्होंने कहा वहाँ मंदाकिनी के किनारे वहाँ गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि आते उनसे पहले बताया कि जंगल में वन में इस चित्रकूट के जंगल में वो भाई चारों भाई ऐसी बात कही तो वो जंगल में देखते हैं तो शिकारी रूप से चारों घोड़ों पर चले धड़ धड़ जा रहे हैं। वो समझे कोई शिकारी आदमी है, शिकारी कैसे वो चारों को मारने वाले होंगे, निकल गए। दर्शन हुए कि नहीं हमारे नहीं हुए, कभी घोड़ा पर थे ना कि मैं तो समझा रही, मैं समझा कोई शिकारी आदमी है। फिर क्या नहीं हुआ, बंदा के लिए किनारे जाओ वहां तुम्हारे राम जी के दर्शन हो गए। तो गोस्वामी जी महाराज चंदन घस रहे थे तो भगवान छोटे रूप से राम जी लक्ष्मण जी मिले, बाबा हमारे को चंदन दोगे, हमारे को चंदन दो। अच्छा भाई तुम इस पर भी जाएंगे, चंदन जा रहे थे चंदन दिया, संतुष्ट दिया जी ठहरे तो बालक मांगते रहते हो गए। तो वहां तोते रूप से कहा है, तोते रूप से बैठे हनुमान जी ने कहा कि घाट पर भई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन के रथ तिलक दे रघुवीर जी पर आ गए। तब पहचाने प्रसन्न पड़े तो पहचानते नहीं तो वो दर्शन करा लिए। तुलसी नफा पिछाणिए भले बुरे क्या काम, प्रेत से हनुमत मिले हनुमत श्री राम। नफा नफा पिछाणिए तो सबकी सिद्धि करो, प्रेम भूत पिशाच सबकी सिद्धि करना निषेध नहीं है। तुम उसमें आसक्ति जाग करोगे तो वैसे बन जाओगे तुम भी। ऐसे कुत्तों को शौक से पाला बड़ा प्यार कर तो कुत्ता ही बढ़ेगा वो, तो ये आज थोड़ा ही भी कुत्ते को रोटी नहीं देनी चाहिए। अरे भाई तुम्हारा ध्येय तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसमें इसका तात्पर्य है। इस ज्ञान तपादी का निषेध नहीं है, पितरों का सत्र का निषेध नहीं है। अपनी कामना भगवान की प्राप्ति हो बोलो, प्रेत राजी हो गया तो गोस्वामी कहते भगवान दर्शन करा दो। अब गोस्वामी जी को इतने इतने भोले मूर्ख थे क्या जो वो भगवान दर्शन करा दे भूत, अब दूसरों को दर्शन करा दे तो भूत क्यों बनाए बेचारा वो। असली लगन होती है वो तो वही बात पूछता है, कोई हो चाहे कैसा है क्यों ना हो, हम रास्ता भूल जाते हैं, पूछे रास्ता कैसे जाता है भाई। बाबा हम तो नहीं जानते, हम थोड़े पूछते हैं तुम रास्ता जानते हो नहीं भाई, मेरा रास्ता पूछा है वहाँ कहाँ टाइम, हम तो रास्ता बताओ, सीधी आई बात पूछते है, वही लगन है हमारे। अब नहीं जानता जानता हम क्या पूछे। तो ऐसी लगन परमात्मा की प्राप्ति की होने चाहिए, सबसे फिर कल्याण करने उधर है, इस बात का निषेध नहीं है। नारायण 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 नारायण। एक सज्जन पूछते हैं कि स्त्री को पुनः विवाह नहीं करना चाहिए, कृपया विदुर पुरुष को पुनः विवाह का बारे में आप क्या विचार बताइए। देखो भाई अपने जो सिद्धांत की बात है वो ये है कि विवाह करना कोई खास चीज नहीं है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, मैंने कहा भी है फिर कहता हूँ ध्यान दें, बिना प्रश्न पूछे बात कहने पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब प्रश्न किया है तो अब कहता हूँ बात ध्यान देंगे। ब्रह्मचारी होते हैं दो तरह के, ब्रह्मचर्या समय पढ़े पढ़ कर तैयार हो जाए और वे ठीक विचार कर बर्बाद में प्राप्ति करना है तो वो फिर ब्रह्मचर्या समय ही साधु और भजन ध्यान करे, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी और दूसरा उपकुर्वान ब्रह्मचारी होता है, वो विचार शक्ति के द्वारा संसार के भोगों की इच्छा का त्याग नहीं कर सके तो उसके लिए कहता है तुम विवाह कर लो। तो विवाह सुख लेने के लिए नहीं करते हैं, विवाह करते हैं संतान हो जाए जो पीछे पिंड पानी देने वाला रहे। ये कोई बड़े ऊंचे दर्जे की बात नहीं है विवाह करना। इस वास्ते विवाह करना चाहिए, विवाह करके देख लिया अब साधु हो जाओ, देख करके साधु हो गया फिर बहम नहीं रहेगा, नहीं तो बहम रहता है नजर कितना सुख होगा इसमें पता है नहीं। पहले विचार द्वारा मिटा दे तो मिटा दो जरूर नहीं ब्याह की, तो ब्याह कोई खास चीज थोड़ी है। आज प्रश्न क्यों उठता है, हरेक के मन में आती है ब्याह कर दू भोग भोग लू सुख भोग लू, अब प्रश्न उठता है। ये सिद्धांत है ही नहीं शास्त्र का। इस वास्ते विदुर हो, उसके लिए अगर संतान नहीं हुआ है तो दूसरा ब्याह भी करे, क्योंकि वंश परंपरा चलती रहे और पिंड पानी बड़ेरों को मिलता रहे इस दृष्टि से ब्याह करे, सुख भोग के लिए नहीं। जैसे कोई विधुर हो गया, मानो जिसकी स्त्री मर गई और दो चार बालक है तो कोई जरूरत नहीं करने की। अरे मैं तो कहूँ बैराग हो जाए भजन में ही केवल लग जाएगा, उसको भी जरूरत नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। तो पितरों के लिए ये पितरी ऋण है हमारे पर, पितरों का ऋण है, देवताओं का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, भूत प्राणियों का ऋण है और मनुष्यों का पांच ऋण है हमारे पर, कर्जा है कर्जा। तो हमने अपने माँ बाप से शरीर प्राप्त किया तो किसी एक दो जीव को हम भी मनुष्य जन्म दे दें तो पितरों का ऋण उतर जाए। आज तो सत्यानाश कर रहे हैं, मिलकर कुरा ले रहे पड़े हैं वंश का नाश करने के लिए। अब क्या दशा बताओ, सिवाय भोग के और कोई मतलब नहीं है। राम 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 राम, भारत वर्ष में राजीत ऑपरेशन करा रहे हैं, नसबंदी करा रहे हैं, गर्भ गिरा रहे हैं, कितनी कितनी भ्रूण हत्या ब्रह्म हत्या से दूरी हत्या कर रहे हैं, कितना महापाप कर रहे हैं केवल भोग इच्छा। अब इसी के लिए कहते हैं साहब कि पुरुष भरा करते स्त्री क्यों नहीं कर सर, नहीं करो कुएं में पड़ो, मैं भी पड़ा कुएं में, अच्छा से भी पढ़ो भाई जाओ। ये कोई बढ़िया बात है, पर लोगों ने इसको बढ़िया मान लिया, जो शंका उठती है हम भी करेंगे ऐसा। अच्छा तो ऐसा वो क्यों करते हैं साहब, तो अगर वो विधवा न करे तो कहना चाहिए कि विधवा स्त्री नहीं कर दो पुरुष भी क्यों करे दोबारा विवाह न करे, इसमें तो हम सहमत हो जाएंगे। पर विधवा विवाह में सहमत नहीं हुए, विधवा की बात आप समझते नहीं, आप केवल भोगों की तरफ ही दृष्टि रखने वाले हैं, उनकी ऐसी शंका पैदा होती है। विधवाओं के साधुओं के एक धर्म बता एक समान, त्याग बैराग से रहे, भोगों में न रहे, ऐसा आराम न करे, ये बताया साधुओं के लिए। तो साधु है वो मनगढ़ंत साधु है, और विधवा है भगवान का दिया हुआ साधु बना है वो, क्या वो जानकर विधवा हुई है? साधु तो जानकर होते हैं, तो जानकर होते हैं जिम्मेवारी ज्यादा होती है, वैद्य की दृष्टि में दवाई ले एक मन घन दवाई ले तो वैद्य की दृष्टि में बढ़िया होता है। तो भगवान जब ऐसा विधवापन दे दे तो फिर त्याग बैराग से रहे तो विधवाओं की गति ब्रह्मचारी की होती है, पांच सात बालक हो गए तो अब ठीक संयम करके और त्याग बैराग से भजन करते हैं तो नए ठीक ब्रह्मचारी की गति को प्राप्त होती है। कभी ब्याह नहीं किया जिसने, ऐसा निष्ठिक ब्रह्मचारी हो उसकी गति को प्राप्त होती है वो स्त्री। बड़ा उसे ध्यान दे, केवल भोगों का ध्यान है, केवल भोग रहे सारा में जो बात, एक तो रुपया संग्रह कर रहे एक भोग भोग ले, महान पतन हो गया। अब क्या समझा, रग रग में बात बैठी हुई है कि रुपया इकट्ठा करें चीजें इकट्ठी करें भोग भोग है। अब कैसे समझाओ बताओ, कैसे आक्रम बात आवे, कितनी विचित्र बात बताएंगे विधवा के लिए। विधवा हो गई बिल्कुल त्याग, असली त्यागी संत महात्मा जैसे अपना जीवन बिताते हैं सादगी से, साधारण निर्वाह करके, किसी की कोई चीज न दे करके, माधुकरी वृत्ति गई भिक्षा से मांग करके अपना निर्वाह करे, चरित माधुकरी वृत्ति में अभी मृत कुलादपी एकानंग नहीं भोग सभ्य बृहस्पति कुलादपी भिक्षा की बड़ी बचाई है। भिक्षाहारो निराहार, भिक्षा आहार है वो निराहार है, बिल्कुल उपवास की तरह। भिक्षा नहीं वो प्रतिग्रह है, वो दान की तरह प्रतिग्रह नहीं है। भिक्षा सोम समम पान तस्मा रह रहा सरे, ऐसे भिक्षा की वृत्ति, इस तरह से विधवाओं को अपना काम धंधा करते हुए जितना मिल जाए उतना में अपना संतोष करे। दूसरे जो आशा रखते हैं, दूसरे से लेने की इच्छा करते हैं, लेते हैं, वे विधवाओं का धर्म नहीं है। जैसे साधुओं का धर्म नहीं है, ऐसे विधवाओं का धर्म नहीं। दूसरे क्यों रहे, काम धंधा करके रहे अपना। तो ऐसी कई बहना हो सकती है कि जिनके पति भी नहीं रखता और नेहर पिहर में भी कोई ऐसा प्रबंध नहीं है, उन बहनों को चाहिए कि अपना छीना है, कासना है, पिरोना है, ये गूंथना है, ऐसा काम अपने घर में बैठी इज्जत प्रतिष्ठा के सहित करती हुई वे लेकर बेचकर उनसे अपने जीव का निर्वाह करे, कपड़े सी करके उनसे अपना निर्वाह करे। क्यों प्रसन्नता भोगे, क्यों दूसरों की दृष्टों के बस में होना पड़े, भजन स्मरण करे अपना, और घर में रहे तो घर में अपना धंधा कर दे। नौकर नहीं कर जिसने ज्यादा, परंतु उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। घर में सुहागन होती है वो अभिमान करती है कि तुम विधवा हो गई अब काम कर, तो उसी विधवा के लिए ठीक है काम करे, परंतु विधवा में की भी शरीर है, ऐसा अन्याय करती है सुहागन है जो अपने स्वभाव का एक अभिमान करके। नेपाल की बात है, नेपाल में वर्षा भी होते हैं, जानवर भी होते हैं और पानी होता है, तो वहाँ घर बनाए हुए हैं, आपने देखा होगा, मैंने देखे हैं, लकड़ियां उभी करके यू वो वृक्ष होता है, 100 वर्ष पानी रहते पानी में गलता नहीं, शंखू वृक्ष होता है, तो वे थम्बे खड़े करके उसके ऊपर घर बनाते हैं। अब नीचे भी कोई रह जाते रह जाओ तो विधवा है उसको वहां नीचे रखा, तू नीचे रह जाए, कोई कहोगे लालटेन तो मेरे को दे दो जो राशन को जीव जिंदा साफ आवाएंगे, कौन खावे रान रहे हैं, ये जवाब जी है क्यों रान दे खाओ कौन साफ, वो स्वाद नहीं खावे, ऐसा अन्याय करे मनुष्य, बड़े भारी धूप को घोर अन्याय कर रहे हैं। जैसे तपस्वी त्यागी को दुख देते हो ऐसे विधवा को दुख देना पाप लगेगा। तुलसी हाय गरीब की हरि से सही न जाए, मुंह में बकर की खाल से लोह भस्म हो जाए। गरीब की हाय है वो बहुत बुरी होती है, विधवा हो गई, धन होता है पीहर वाले ले लेते हैं कि भाई तू हमारे पास जमा कर दे जाएंगे, और आपस में बात करते कि ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ब्याज देते रहना है, ये तो अपना हो गया बस। ससुराल वाले भी कहते हैं कि बिजली अपने पास पास वजह जमा, पर कह देते हैं थोड़ा ब्याज दे, कभी ब्याज भी नहीं देते, महान अन्याय करते हैं, महान हत्या करते हैं, गरीबों को दुख देते हैं। वो पैसा आपका नाश करेगा और उसी से बुद्धि भ्रष्ट होगी और पतन होगा और नरक में जाओगे। हम क्या करें, सुनते नहीं कोई, विधवा को दुख देते हैं। एक जगह भैंस की चोरी हो गई, भैंसों को लेकर चोरी चले गए, बीच में आई एक देवता की मूर्ति, एक शक्ति का मंदिर आया, उस शक्ति के मंदिर में जाकर के उन्होंने कहा कि महाराज हे शक्ति माता काली मैया, अगर हमारी ये चोरी फंस जाए तो तुमको ये बांडिया भैंसा चढ़ा देंगे। पुलिस आए, पुलिस चढ़ने वाली बाहर चढ़ी, वही गया वहाँ मंदिर में गया कि हे माता जी हमारी भैंसा मिल जाए तो एक पाड़ा तुम्हारे उससे डाल देंगे, बाणी पाप बापरी मौत आएगी, मिल जाए तो मरे न मिले तो मरे, जो आजकल विधवा तो बाणियों पाड़े हो रहे हो, अच्छे खा रहे उठ रहे खा रहे, वो क्या करे बेचारी कहा जाए, बड़ी पाप की बात है। जैसे साधु संत का आदर करते हैं, हमारे जैन भाई जिस तरह आर्जिया ढूंढने होती है वो आर्जिया कहते हैं, आर्जिया है भी तो उनका जैसे आदर करते हैं वैसे आदर करना चाहिए। सब आदि में विधवा नहीं जाया करती, आज कभी विधवा आ गया अब सुगुन हो गया, ये भोगों का कीड़ा आ गया सुहागन से हो गया सुगन और त्याग की मूर्ति आ गई उसे अब सुगुन कोई न्याय है, वो त्याग की मूर्ति है और त्याग वो साधु करते मन ग्रंथ वो करता है भगवान का कराया हुआ त्याग है, तो ऊंचे दर्जे की चीज है वो अगर धर्म का पालन करे, और धर्म का पालन नहीं करते तो भाई किसी जगह जाओ चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो चाहे भाई हो बहन हो कोई क्या हो, तो अपने धर्म का पालन नहीं करना पसंद होगा और कौन रोक सकता है, पर अपने धर्म का पालन करे तो श्रेष्ठ में कर्म बनिया भी जाता सर सिद्धि लगते नरा अपने हम कर्तव्य ठीक पालन करता हो मन परमात्मा प्राप्त हो जाता है, चाहे विधवा हो सुहागन हो कन्या हो कोई हो अपना भजन स्मरण करता है भगवान के ही तरफ चलता है अपना निर्वाह जैसे मिले वैसे निर्वाह कर लेना है। संत साधुओं की बातें वृक्षों की त्यागियों की बातें मैंने सुनी है, उनका यही मतलब है कि बस भाई जो मिल जाए वही खा लेंगे अपना, जैसे मिल जाए कपड़ा पहन ले जैसे निर्वाह वैसे निर्वाह कर लेंगे, अच्छी मिल जाए तो मंदी मिल जाए जैसे में फकीरी में कैसे कैसे चाहते आते परीक्षा से खटर गोदर चागर खुदिया हरना वे लूखा सूखा टुकड़ा खाकर इस पर उधर भरना वे उधर भरना है भाई काया का भाड़ा देना ही चाहे बढ़िया मिल जाए वाहवारे बोझ फकीर आंदी कभी मिल जाए सूखा टूकर कभी लपटा खीरा दी वाहवारे बोझ फकीर आंदी कभी माल मिले कभी सूखा ठूरा मिले कभी चावल मिले कभी मरा चना मिल जाए कठे सूखा चना कठे घी घना अपने जो मिल जाए उस पर निर्वाह करे, और निर्वाह का प्रबंध भगवान के यहाँ है। प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर तुलसी चिंता क्यों करे भजले से चिंता क्यों करे अन्याय क्यों करे, आप लोगों में सत्संग कर बचाया तो ये मंडप पहले बना पीछे आपको निमंत्रण दिया पीछे आपको बुलाया है बुला रहा आपको बैठा दिया कि अब देखो अब मंडप बनाएंगे ऐसा होता है, तो प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर तुलसी चिंता क्यों करे भजरे श्री रघुवीर पेट में जो पेट भरा अब पेट के बाद कहाँ भटके पेट में भी तुमने पेट भरा क्या आज पेट भर नहीं भरेंगे क्या भगवान दूसरे हो गए बदल गए भगवान का क्या हो गया, तो वो सबको देते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार उद्योग करो दूसरे की आशा रखनी दूसरे से लेना ये बहुत दोष की बात है कर्जा चढ़ेगा तो क्यों ऐसा करे, और निर्वाह वास लेने में दोष नहीं लगता है। सारी रंग केवल रंग कर्म कुरुन अपने गीता में बड़े जोर से लिखा है कि शरीर निर्वाह के लिए रोटी कपड़ा ले ले पाप नहीं लगता है, ऐसा आरामी भोग है सुख है संपत्ति है संग्रह करने के लिए करे तो उसका पाप लगता है, निर्वाह मात्र हमारी चीज है। मैंने वो सुनाया था ना घर पर कोई भिक्षुक आवे और वो अगर खाली चला जाए तो सतस्मै दुष्कृतम दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति पुण्य तो ले जाता है और पाप दे जाता है, क्यों दे जाता है ये बात युक्ति समझ मैंने बताई। अभी जो एक बात बता मैं अब विचार करूं और रुपया संग्रह करने का विचार करूं तो 100-200-500 रुपया भी संग्रह नहीं कर सकता क्या, मैं किसी को पढ़ा दूं घंटा दो घंटा तो उसमें भी हमारी जीविका खूब चल जाए, रुपया संग्रह कर 500-700-1000 रुपया संग्रह कर सकता हूं कि नहीं, ऐसा तो होगी भाई पलगोर जो कि करीब से करी इतना मैंने नहीं किया अपने संग्रह नहीं किया तो आप नहीं रहा और कहाँ रहा बताओ साहब, वो आपके पास रुपये उनमें से लेता मैं किसी हुनर से ले वो लेता तो आप लोगों से ही वो संग्रह करता, वो संग्रह नहीं किया तो आप में तो रहा, हम रोटी मांगे वो रोटी भी आप नहीं देते हमारे धन खाकर बैठ गए आप, इस वास्ते उसके लिए कहा गया कि ऐसा भिक्षु कहा है तो उसको अन्न दे देना चाहिए, आधी रोटी दे दो, एक रोटी दे दो, थोड़ा दे दो, फिर आप बड़ी कहीं कोई नहीं आपकी, तो उसका हक लगता है कि नहीं, प्राप्त है कि नहीं उसका, तो उसकी कोई दोष नहीं है, भिक्षा का निर्वाह करे, अपना भजन करे भगवान का, लग जाए भजन में, यही विश्वम्भर देव भगवान का भजन करते हैं, भगवान अनंत सृष्टियों का पालन करता है, तो भगवान के भजन करने वाला भूखा रहेगा भगवान के यहाँ दरबार में, मिलेगा कैसे मिलेगा, अब क्या पता कैसे मिलेगा, मिलेगा। मैंने कई ऐसी कथाएं सुनी है संतों की, ईश्वर की सत्ता और महत्ता एक पुस्तक है, गीता प्रेस में छपी है, अब आती है पता नहीं है, ईश्वरांग निकला है, उसके बाद उस वक्त में जितने अच्छे अच्छे महात्मा थे उनके पास में आदमी भेजे, चार प्रश्न किए, ईश्वर है कि नहीं है, तो युक्ति क्या है और प्रमाण बताओ और तुम्हारा अनुभव बताओ कि तुम्हारे को अनुभव हुआ कि ईश्वर है, ईश्वर से अनुभव, तो अनुभव बताओ ईश्वर कैसे माने हम, और वो संत ने बताया है, और वो छपा सा कल्याण के परिशिष्ट अंक में ईश्वर अंक के बाद वो पुस्तक रूप से छप गई है, पुस्तक का नाम है ईश्वर की सत्ता और महत्ता, अब मिलती है नहीं मिलती मेरे को पता नहीं है, उसमें कई ऐसे लिखे हैं संतों ने अपने अनुभव लिखे हैं, एक सज्जन ने लिखा कि मैं बद्रीनारायण गया था, तो बद्रीनारायण में पैदल जाते थे पैदल आते थे, अब तो हवाई जहाज हो गए, अब तो कहना क्या है, मोटर जाती है, तो बद्रीनारायण से लौट रहा था तो वो पहाड़ों का पानी होता है ना, वो पानी लग जाता है, पेट खराब हो जाता है, झरनों का पानी, तो उसमें फिर एक तो सांगरी एक कह दिया एक कूट करके फाकी ले ले, ले तो वो पानी असर नहीं करेगा, अपने देश का कह दिया ये तो एक सांगरी खेल की कह रहा हूँ ये फाकी एक दो सुबह सुधा तो असर नहीं करता, ये बीच में आगे बात कह रही, तो वे सज्जन वहां से चले तो उसकी दस्ता लगने लगी, दस्ता लगने लगी और रात्रि में रास्ता भूल गए, अकेले थे, चले गए पहाड़ों में, वहां पहाड़ों में कोई घर ही नहीं, चलते चलते पहुंचे दस्ता लगे, पानी मिल जाए तो साफ कर दी, तो कहां से करे जल जावे कहां से, तो रात्रि में कोई खूह मिल गई इसे गुफा, तो उसे पड़े रहे, तो दूसरे दिन सुबह हुआ तो एक आदमी आया, आदमी को बाबा जी लो मैं जल लाया हूँ और पत्थर लाया हूँ ले लो, हाथ पैर धो लिए पत्थर ले लिया, फिर भी चलने की शक्ति नहीं तो पड़े रहे वहां ही, दूसरे दिन फिर आया और ये लो आप पत्थर ले लो जल लाया हूँ जल ले लो, कि तुम बताओ कौन हो, कि तुम ले लो कौन है, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम अपना ले लो, नहीं मैं नहीं लूंगा, तुम अपना पैसे नहीं दो मैं कैसे लू, तब कहा कि तुमने सुना है कि नहीं भगवान भगवान वो हूं मैं तो आप आते हैं कि जहां मनुष्य होते हैं तो मनुष्य में प्रेरणा कर देते हैं, वे हर सेवा करते हैं, ऐसा वे नहीं होते वो मैं खुद जाता हूँ कौन लाऊ, पुरुष है ही नहीं मनुष्य नजदीक नजदीक में, तो मैं कैसे मानू, तो आप कैसे मानो कि मेरे को चतुर्भुज दर्शन दो, तो चतुर्भुज संघ चक्र के लापते दर्शन दे दिए, ये भगत होते हैं भगवान को धमका कर दर्शन कर रहे ससंग चक्रम सकी कुंडलम सभी वस्त्रम सर सही क्षणम सहार वक्षस्थल कौशवस्त्रम नमामि विष्णुम सिरसा चतुर्भुज प्रकट हो गए, तो फिर वो स्वीकार किया होगा, इस वजह से भगवान दर्शन दिए, वो इस सत्ता महत्ता में लिखी हुई ऐसी बातें हैं, उन संतों ने अपना अनुभव कहो, उन्हें ऐसा पूछा गया कि अपना अनुभव जीवन में होगा वो बताओ, एक कथा ऐसी में लिखी है, एक साधु थे बड़े भगवान के भगत, पर भगवान को माँ मानते थे, भगवान मेरी माँ है, माँ रूप से भगवान का भजन करते थे, मेरी माँ है माँ है, मैं तो बालक हूँ मेरी माँ है, तो एक धनी के पहुंचे तो उसने भिक्षा कराई, भिक्षा करके मोटर में देकर अपने बगीचे में बता दिया, वहां पे वो तख्ता दे दो महाराज, यहाँ सो जाओ आराम करो। पास में जल भर के रख दिया, कुंज में जल भर दिया, गिलास रख दी। अब सो गए, नींद आई, उठे तो प्यास लगी, प्यास लगी तो शायद पियोगे, क्योंकि बाल गाप थोड़ी पीता है, माँ पिलाती है तो पीता है, बच्चे क्या पिए, नहीं पिया सर, माँ पिलावे तो पीऊ, मैं ऐसे कैसे पीऊ, बाल थोड़ी पीता है। तो नौकर आया कि बाबा जल पियोगे, हाँ हाँ माँ आ गई, अब तो माँ आ गई थी, पानी पिला पी लिया अपना। शाम की बगत में वो धनी आया कि महाराज चलो अपने मोटर में बैठो, चलो यहाँ बाहर घूमने के लिए भी चलो। तो बैठ गए, वो संतरा और केड़ा लाया के बना दिए, लोग नहीं खाऊंगा, तो बारिश तरह की चेष्टा करेंगे, नहीं खाऊंगा। मन में आया कि मैं तो ऊख चूसूंगा, साथ चूसूंगा, मैं मन में आई ऐसी बात। अब वो लाया केड़ा और संतरा, तो कही नहीं बात कुछ भी, वहां मोटर से उतर करके नहर के ऊपर ऊपर घूमने लगे, पटरी पटरी घूमने लगे। तो उसने अपने हेठा टोप लिया हाथ में, वही घूम रहा है, कैसे महाराज देखो ये टोपी पुरानी हो गई, ये तो देखो इस टोपी पुरानी हो गई, क्योंकि उसने जल में फेंक दी नहर में। ये नहर क्यों फेंके, तू बारे रख, छोरे बड़े आसाव से तोड़ेंगे इसको, अरे हेड लगा देंगे, खुशी हो जाएगी उनके, जल में क्या काम आएगा। उसी बात बात से बाबा जी ठीक कहते हैं। तो वो चली अगाड़ी, तो वो दौड़े आगे, पुलिया पड़ता साइड में रास्ता ऊपर, उस पुलिया पर वहां पहुंचा, वहां पहुंचा तो वहां एक बेचने वाला एक आदमी खड़ा था। तो अरे क्या करूँ, टोपी निकालूंगा, उसने पुलिया पर टोपी उड़ा करके और ये उसे निकाल ली, निकाल कर बोला कि एक को अपने काम में ले लिया तो मैं पैसा दे दूँ इसके पास है। तो पैसा दे दिया, लिया है, अब तो मैं अब सोचूंगा बाल की तो खैर, अब तो बाहर नहीं भेज दिया, ऐसे माँ सेवा करती है। उसने अपने अंगूर निकाला, वो टोपी लाए, टोपी बाहर पहन ली। अब देखो किस तरह से ऊख चूसूंगा, माँ ने कैसा प्रबंध किया, वो माँ बड़ी विचित्र माँ है, ऐसी माँ है, मेरी माँ है, खूब मस्ती मेरे आनंद से। अब माँ के गोद में रहे, वो चिंता किस बात की, माँ की मेरी माँ करेगी सब, ऐसे में संतों ने कहा। तो इस तरह से भगवान शिक्षा करते हैं सबकी, सबका पालन पोषण करते हैं। तो विधवाओं को चिंता नहीं करनी चाहिए, अपनी चिंता करे क्यों, भगवान को कह दे, भगवान करेगा इष्ट। राम है, कृष्ण है, विष्णु है, शिव है, इनमें कई इष्ट को मान ले और वे इष्ट सारे वो मेरे हैं। राम जी को इष्ट मान लिया, रामायण का पाठ करे खूब, हनुमान जी को कहे बाबा आप रेखा, और हनुमान जी ने प्रतिज्ञा की है, सनकादिकों को उपदेश दिया हनुमान जी ने रामचाप जी को उपनिषद में, उसमें कहा है कि जो राम जी के भक्त है उनकी सेवा करना मेरा काम है। जैसे राम काज करबे को आतुर है, तो राम जी का काम हो गया, राम के भक्तों का काम भी तो राम जी का भक्त काम है, हनुमान जी मैं करूंगा उस सब काम। तो प्रबंध करते हैं, खाने पीने का सब प्रबंध कर देते हैं, रक्षा का सब प्रबंध कर देते हैं। कई जगह ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है, हनुमान जी ने ऐसा प्रसाद दिया बहुत बार, तो वो रक्षा करते हैं। एक दूध बेचना भी माई थी, दूसरी बेचना दूध में पानी मिला मिला करके बेच दिया। तो एक बंदर आया, बंदर आया जो छेली देकर चढ़ गया वृक्ष पर, सर पर फेंक दिया, निकाले फेंके, निकाले पैसा फेंके, जितना जितना दूध का पैसा था उतना थैली में रहा, दूसरा सब फेंक दिया, फिर थैली छोड़ के भाग गया। तेरे पैसा है नहीं, तेरे को कैसे मिले। ऐसे ठाकुर जी करते हैं महाराज, कई तरह की ऐसी चेष्टा होती है। तो भगवान हनुमान जी की रखे सदाई है, राम जी की करे सेवा, राम नाम का जप करे, हनुमान साहब का पाठ करे, राम नाम करे, भगवान से महाराज अब आप जानो, मैं तो महाराज आपका हूँ, बस आपके आप जानो, आप निश्चिंत हो जाए भगवान के भरोसे। मोक्ष जी से अभी माँ सोचे भगवान के तुम चिंता मत करो, चिंता के चिंता दीन से हाल को मोहम्मद सदा आनंद जाए सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। उनकी चिंता हमारी क्या बात है, कोई चिंता नहीं, मस्त ऐसे भगवान के नाम का जप करो, प्रेम करो, पस्त से रहो, सब जगह पालन करते महाराज सब जगह। बड़ी बड़ी बिकट बिकट समस्या, एक हमारे मित्र साधु उनकी घटना बताऊं तो वह एक क्या किया इन चीजों के मन में आई, नाम तो मुझे नहीं बताता हूँ। वे कहते हैं एक दिन से बैठूंगा नहीं और बोलूंगा नहीं, देखो भगवान कैसे देते हैं मेरे को। तो दो तीन दिन कमंडलू पास में डोरी थी पर खेस के पी लिया पानी और फिर चल दिए, चलते चलते जहाँ आदमी सो गए और चल दिए, किसी से कहना नहीं, एक जगह बैठना नहीं, भिक्षा मांगना नहीं, गांव में जाना नहीं। रस्ते से चलते चलते गांव नजीक आया, यूं चलते मार्ग मिल गया, उसी मार्ग में पड़ गए। अब कोई कहीं जाना थोड़े ही अपना, ऐसे चलते चलते दो तीन दिन हो गए बिल्कुल भूखे, जल पीने से स्थल से। तो वहां पहुंचे तो शाम की वक्त हो गई, तो एक भेड़ बकरी चराने वाले आगे, बाबा जी सुनो, बाबा जी किसी को सुने नहीं, परवा ही नहीं, मार्ग मार्ग चले ही गए। बकरी चला वाले ने देखा भी बाबा जी भूखे होंगे, शायद घर पर पहुंचा तो घर में गाय का दूध लेकर लोटे और पहुंचे, ये मार्ग तो खेतों का है, बाबा जी को तो पता नहीं, ये खेत में जाकर बंद हो जाए कहां जाएंगे। तो उनको पता था, वो तो उसी गांव का ही था, तो उस मार्ग मार्ग पहुंचा, उसी खेत में पहुंचा, तो ये भी पहुंचे तो वहां पानी पी लिया निकाल करके और वहीं सो गए रात्रि में। वो जाकर पास में बैठ गया, करुवट बदली, महाराज बाबा जी महाराज कोने में क्या बात है, तेरे मैं दूध लाया हूँ दूध पी लू। तो सैनिक क्या बात है कहाँ से लाए, सैनिक जी कही कि महाराज मैं वही हूँ आप जो उस शाम के वक्त में आ रहे थे, मैंने आपको आवाज दी, वो भेड़ बकरी चराने वाला वही मैं हूँ, मैं दूध गाय का है आप समझ, भेड़ का बकरी का नहीं पियोगे आप, तो मैं दूध गाय का लाया हूँ सब खेल। अब तो ठाकुर जी दूध से जब पिए गई सच पी लिया अपने, तो ठाकुर जी वो निगाह रखते किस रूप से कैसे देते हैं पता नहीं। अब दो दिन चार दिन तीन दिन निकल गया, मर्जी है भगवान की मर्जी है, भगवान परीक्षा लेते हैं, परीक्षा देते हैं, वो परीक्षा क्या है, भगवान की परीक्षा और तरह की है, हम तो परीक्षा लेते हैं कि ये कितना पढ़ा लिखा है, ऐसी परीक्षा लेते हैं। अब भगवान कहते हैं कि वो मेरे पर कितना विश्वास रखता है, भगवान तो जानते हैं ना, जानते हुए परीक्षा लेते नहीं है, उसको खुद को जनाते हैं कि तू कितना विश्वास रखता है, ये उसको जनाने के लिए परीक्षा लेते हैं, हम तो जानने के लिए परीक्षा लेते हैं, वो उसको जनाने के लिए परीक्षा लेते हैं, समझे कितना है। इस तरह से भगवान देते हैं तो चार दिन पांच दिन सात दिन ही हो जाए, एक दिन ही हो जाए, एक टाइम हो जाए, अब उसे क्या पता है, तो भगवान करते हैं प्रबंध, मरता नहीं आदमी, भगवान का बल रहते मस्ती से अपना आनंद से। भिक्षा का काम है तो भिक्षा मांग गए अपने घरों में, यहाँ गए भिक्षा मिल गई पा लिया अपना मौज से आनंद से रहते रहे अपरिचित घरों में। तो इस तरह से साधु का बहुत अच्छे से निर्वाह हो जाता है, एक जगह बैठे बैठे निर्वाह हो जाए। बीकानेर में सिंगल के पास इधर की गाड़ी जाती है, उधर नागौर गाड़ी आती है, दोनों गाड़ियां बरोबर लाइन चलती है। वहाँ सिंगल के पास में मशानों की मकान है कहीं, उसमें एक बाबा जी जाते थे, उस बाबा से बात हुई तो वो कहते थे मैं गया तो वो आज के लिए वृत्ति करते, वो मांगते नहीं, न भिक्षा में जाते न मांगते, भिक्षा जाते ही नहीं कहीं, जहाँ बैठे वही बैठ गए, चल दिए बैठे वही बैठे, वही यहाँ ला कर वो देर खा लिया। वो कहते हैं दो दिन का भूखा से कितना कह याद नहीं है। बिठंड स्टेशन पर पहुंचा तो वहाँ महाराज वो लड्डू ला करके आदमी आया, फिर बाबा जी ये खा लो, लड्डू खा ली पीछे आ गए बीकानेर, तो बीकानेर वहाँ रह गए तो महाराज सोशराज महाराज थे आनंद आश्रम में, वहाँ तो सदा भिक्षा भेजा करते थे वो यहाँ से संतो यहाँ से ये मेरे देखी हुई मेरे सामने की बात है तो विषय से हो। अब कोई जान नहीं पहचान नहीं किसा क्या है किसा को नहीं मिलती। एक संत थे हमारे वृद्ध, तो वो कहते थे कि एक आदमी एक साधु आया, साधु जो गाल बोले, अरे उन्हें गाली बोले उन्हें और मुंह से खावे नहीं अपने हाथ से खिलाओ तो खावे। तो वे संत कहते थे कि मैं गया कवा दे हुए, तो कहते तेरे बाप को छोटा कवा दे बड़ा कवा के अंदर, तेरे बाप कैसे खाएगा गाली दिए तो बाबा खाए खाए। उस संतोष का कैसा ही बाबा आया था, एक गोरखपुर में बाबा बगीचे में रहते थे, भिक्षा देते तो कोई पत्ता ले रहे कपड़ा ले रहे वो जमीन पर ही देते, जन पर दे रख दो जो भिक्षा हो अपने पाए भिक्षा भाई पत्र भी नहीं जमीन पर ही रख दो खा लेता। ऐसे कई कई संत महाराज जिनका निर्वाह भगवान करते हैं पालन करते हैं भगवान, तो ऐसी बिल्कुल बिल्कुल बातें हैं। भगवान सबकी रक्षा करते हैं महाराज, मनुष्य क्या करेगा रक्षा, भरोसा भगवान का रखना, निश्चिंत रहना चाहिए, निर्भय रहना चाहिए। आज की भी वृत्ति करते हूँ अजगर जैसे पढ़ा रहता है ऐसे अपने पढ़ रहे, भागवत में आख्यान आता है कई पुराने विषय आते हैं। आजकल के जमाने में संतों ने ऐसा देखा है करके देखा, ऐसा होता है निर्वाह। अब कब भूखा रह जा कब प्यासा रह जा कब ऐसा रह जा, नहीं रहते नहीं भी रहे तत्काल भी मिल जाता है। कृष्ण से देते हैं अब कृष्ण से क्या देते हैं, ये साधु है ना इनको बहुतों को अनुभव होता है। हम वृंदावन में रहते थे तो वहां से जा रहे थे तो मथुरा जी के द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए गए, द्वारकाधीश से दर्शन किया दर्शन कराए तो विचार किया भी जिन पैसों वालों को तो द्वारकाधीश का प्रसाद मिलता है हम कैसे बन में आए कि प्रसाद मिल जाए तो अच्छी बात। द्वारकाधीश मंदिर से बाहर आए एक कुंजल है, अरे बाबा ये कुंजल खाओ ठाकुर जी का प्रसाद हमने कोई प्रार्थना की नहीं कुछ नहीं आपसे आप जाकर दिया। हम जा रहे थे तीर्थ यात्रा में तो जहाँ से पुरी की तरफ तो बीच में एक आगे भगवान का मंदिर तो लोगों के मंदिर तीर्थ हम गए मंदिर का दर्शन कर रहे हैं तो मंदिर का दर्शन करने में तो मंदिर हो गया बंद। अब कैसे चार बजे खुलेगा इसको तो। अब इसे में हमारे आगे जाना है क्या करें, तो फिर हमने विचार ये भी क्या दर्शन तो कर लेते तो चार तरफ घूम ले कपाट बंद तो ऊपर मोरी में से चढ़ कर देखा तो ऊपर मोरी में से दर्शन होते थे, ऐसे चोरी करके दर्शन किए। दर्शन के लिए वो सोच दर्शन करते अब चलो गाड़ी, अब जाओ तो गाड़ी की चाबी दी मोटर हमारे पास में थी और चाबी दी चाबी की चाबी सही नहीं, अरे चाबी कहाँ गई पता नहीं कहाँ गई चाबी, क्या हुआ कैसा हुआ चाबी नहीं साहब, तो ढूंढते फिरे अब तोड़े कौन वो तोड़े तब से नहीं तो चाबी खोलनी पड़े तो ठहरना पड़ा। अब चार बजे दर्शन हुए सब दर्शन किए तो उसका नाम भगवान का नाम खीर चोर, खीर चोर भगवान का मंदिर है वहाँ वो खीर चोर थे तो माधवानंद जी को एक संत थे तो उनको खीर का प्रसाद मिला तो खीर का प्रसाद गया खीर तो बहुत बढ़िया है ठाकुर जी थोड़ी सी मिली खीर तो मन में आई ज्यादा तो ठाकुर जी घीर खीर का तसला रहे मराया था तो भगवान ने अपने बागे में रुका दिया थाली दे के वही रह गया। रात में मिलेगा कुछ बाबा ये खीर है ना खीर बहुत खीर चोर भगवान है आप नाम उनका खीर चोरी है क्या हमने चोरी करी। अब वो चार बज गए दर्शन किए तो एक छोरा आया अरे बाबा तुम्हारी चाबी लो, अरे बात क्या हुई तो रामाधार जी हमारे साथ में थे वे छोरों को दिया करते ये मकान बता सकते थे वो जाने हुआ चाबी दे दी उस छोरे को दर्शन होने के बाद आ गए तो बाबा ये चाबी लो तो दर्शन के बिना जाने नहीं दिया समझे। अब क्या करें बताओ ऐसे भगवान की विशिष्ट चमत्कार है होते हैं ऐसे तो खीर सो रहे थे, हमने भी चोरी से दर्शन किया, ठाकुर जी राजी नहीं हुए, चोरी क्यों करते हो गए, हम जाने नहीं जाएंगे तुम्हारे को 4 बजे से पहले, तो क्या करें साहब, साहब भी नहीं गोल चले कैसे मुझे, ऐसे भगवान किया करते हैं, ऐसे विचित्र विचित्र जीता करते हैं भगवान, मनुष्य को पता नहीं लगता, हम जान नहीं पाते, भगवान छुट जाए उनको कौन जाने महाराज, ना जानो किस वेश में नारायण मिल जाए, इस बार सबसे मिलिए सबसे प्रेम से मिलो, ना जाने किस वेश में भगवान मिल जाए, ऐसे विचित्र भगवान लीला जारी है, ऐसे भगवान का भजन करो, चिंता करो, मस्त रह जाओ। तो विधवा के लिए विवाह की बात हम नहीं कहते भाई, हम तो विवाह की बात ही ठीक नहीं लगती है, विवाह क्या करना है, वो जब इंद्रियों का संयम न कर सके, मजबूरी हो तो विवाह करके देख लो, फिर स्त्री मर गई तो भी न करे, पितरों के लिए किया जाए तो भी पुरुष के लिए विशेष नहीं है, स्त्री करे तो स्त्री का विवाह होता नहीं, स्त्री के विवाह की संज्ञा नहीं है, विवाह में कन्यादान होता है और वो कन्या तेल चढ़ती है, अब विधवा कैसे तेल चढ़ेगी, बार बार चढ़ती है कैसा तेल है, और वो अब कन्यादान कौन करे, बाप ने तो दान कर दिया, रहने वाला मर गया, अब कौन कन्यादान करे, तो विवाह संज्ञा ही नहीं होती, व्यवचारी होता है, वो कोई कन्यादान नहीं है, तो ये नहीं करना चाहिए, पुरुष को क्यों करना चाहिए, पुरुष को ना तो कन्यादान होता है, पुरुष का पुरुष दान होता ही नहीं, कन्या ही कोई माँ बाप को देने की बात है, केवल संतान उत्पत्ति हो जाए वो भी पिंड पानी देने के लिए, अपने सुख के लिए नहीं, अब सुख के लिए करते हैं तो मेरे से वो सम्मति पूछे तो विधवा को नहीं करना चाहिए, बुजुर्ग को भी नहीं करना चाहिए, अपना भजन स्मरण करो, भगवान में लग जाओ, एक बार ब्याह कर दिया देख लिया, अपना भाग पता नहीं आ गया उसने, ये बस अब भगवान की आज्ञा नहीं करो भजन, साधु घर में बैठे ही करो भजन, पास में भजन करने के लिए मनुष्य मिला है, इसमें विचार का आपके क्या विचार है, मेरे क्या विचार है, विचार शास्त्र का है, बोल रहे तस्मात शास्त्र प्रमाण से कार्यकारी कर्तव्य कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र का प्रमाण लेना चाहिए, शास्त्र नहीं कहता है, ये मनुष्य मिश्र में आया है कि बैन रहता हुआ है, बैन पृथ्वी के मंथन से पहले एक दुष्ट पैदा हुआ, वो बैन राजा था, उसने कहा कि विधवा करना चाहिए, विधवा उपवाह करना चाहिए, उसमें निजी जाति वालों ने वो स्वीकार किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ने स्वीकार नहीं किया, मनुष्य मिश्र में बढ़ना था इसका विस्मरण नहीं किया, तुम्हें विवाह होता है तुम्हें विवाह नाता होता है, विवाह नहीं होता है नाता कह रहा से नाता करते हैं, उसमें आज अगर अच्छे अच्छे कुलों में ब्याह होने लग गया, आज तो इच्छा ही वो सिद्धांत ही भोग का रह गया, इस वास्ते सुगंधी का रहे गर्भ गिरा हुआ है, कितना कितना पाप करते हैं, केवल भोग की इच्छा, इसके बाद कोई बचाओ परमात्मा की इच्छा हो परमात्मा की आपसी इच्छा हो बचाओ, तब उनको कैसे समझाया जाए, भोगों का किया है केवल उद्देश्य ये है, ये भोग तो भाई पशु पक्षी हो जाए तो वहीं मिल जाएगा, मानुष शरीर प्राप्त किया है क्या कर रहे हो आप, कि वो कर विधवा पुरुष करते हैं हम इसलिए हम भी करेंगे, ये कोई बड़ा काम है क्या, ये तो बड़ा नीचा काम है, कोई ऊंचा काम नहीं है, इस वास्ते भाई हो चाहे बहन हो कोई अपने परमात्मा की प्राप्ति करो, विधवा का धर्म क्या, विधवा का धर्म है साधुओं का धर्म से त्याग तपस्या से रहना, साधारण अपना निर्वाह करना, सही ठीक हो और सहन तो उपवास करे एकादशी का व्रत करे, और वो भी शरीर में सहन न हो भजन में बाधा लगती हो तो पद्म पुराण में आया है भागवत के महात्म में आया है कि उपवास भोजन तू बड़े मने भोजन को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, कथा विघ्न करो यदि उपवास करे सब भूखा रहे कथा न सुन सके तो उपवास नहीं करना चाहिए, खा करके भोजन करो, भजन में और सत्संग में कथा सुनने में जो फायदा होता है वो भूखे रहने में नहीं होता, भूखा इतना ही रहना चाहिए जिससे कथा में बिगड़ न हो सत्संग में भजन न हो भजन ध्यान में बिगड़ न हो, तो उपवास करो विधवाओं के लिए भी और स्वागुणों के लिए तो व्रत करने का निषेध बताया। मनुष्य ने बड़ी कड़ी बात लिखी है, जो सधवा है सुहागुण है वो अगर करती है उपवास तो पत्नी से हरती आए पति की आयु का नाश करती है, नरकों में जाती है, ऐसा लिखा है। मनुष्य में देख लेना किसी कड़ी बात लिखी है। पति कह दे तो पति के साथ करो, पति की आज्ञा से करो, अपने ऐसे न करे। मैंने पूछा आश्चर्य क्या बात है, इतने क्यों किया कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। उपवास करेगी तो पति सेवा नहीं रहेगा, जल का भी नहीं कहेगा तू जल पिला ले, ऐसे कैसे कहे उसने उपवास किया है। तो मुख्य धर्म पति पद है उसका, दूसरा मुख्य धर्म नहीं है। मुख्य धर्म के लिए गौण धर्म का त्याग होता है, तो उसको उपवास आदि करने की जरूरत नहीं है। पति कहे तो करो, पति कहे तो करो, उसकी आज्ञा एक ही धर्म एक वर्ष एक ही नियम सुहागुणों के लिए। ऐसी बात है, भजन स्मरण करो, भगवान को याद करो, भगवान के भजन के निषेध करे तो मीराबाई ने नहीं माना। मीराबाई ने ऐसी बात सुनते है, इसे विकल्प करते हैं, कोई लेकिन इतिहास है ऐसा नहीं है, परंतु आया है ऐसा। उन्होंने पूछा पिताजी गोस्वामी जी को, महाराज मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे ससुराल वाले के तुम भजन छोड़ो। तो उन्होंने पत्र लिखा, उसमें ये पत्र लिखा कि जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिये ताई कोटि वैरी सम यद्यपि परम समय ही जाके प्रिय न राम वैदे ही। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंच ब्रज बंसने भय शुभ मंगलकारी। राजमंग का जय में वहां भी कहा है जो भजन से विमुख हो उसका त्याग भी किया जा सकता है। तो तजियता ही कोटि भैरी सम जद्दी भी पदी सुन रही है। पिता तो जो प्रहलाद, प्रहलाद ने बाप को छोड़ दिया, तो बाप को छोड़ा नहीं, बाप की जो वो आज्ञा है भजन मत करो ये नहीं मानी। और बाप की किसने आज्ञा पालने वाला कया धू को कहा कि तेरे बेटों को जहर पिला दे। पिता कहता है, पिता प्रहलाद का पिता जहर देता है अपनी स्त्री को और कहते बेटों को पिला देंगे। अब माँ है उसे हाथ में जहर है, अब पति बसा है, बेटा सामने, अब क्या करे, जहर पिला उस बेटों को कैसे पिलाया जाए और पति की आज्ञा कैसे निचाली जाए। तो बैठी प्रहलाद का माँ, पिता दे तेरा भी धर्म रहेगा मेरा भी धर्म रहेगा, पिता की आज्ञा है, पी गए कुछ बिगड़ा नहीं होने का।